समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान -4 सुमात्रा श्री विजय देश। सुमात्रा की लंबाई 1090 मील, चौड़ाई 248 मील और क्षेत्रफल 167,480 वर्ग मील है।
जनसंख्या 80 लाख, जावा की तुलना में वह कोई 4 गुना बड़ा है। पहाड़ी उतार चढ़ाव और नयनाभिराम हरियाली से आच्छादित यह देश भी बहुत सुंदर मालूम पड़ता है। समुद्री व्यापार में इस देश का बड़ा महत्व है।
वहाँ का पुरातत्व विभाग यह बताता है कि 7वीं शताब्दी में संस्कृत वहाँ के शिक्षित वर्ग की मान्य भाषा रही है।
कहते हैं कि भारतीयों का सर्वप्रथम प्रवेश इसी क्षेत्र में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि में यह उस क्षेत्र के सब द्वीपों से बड़ा है।
उसे लगभग भारत के मद्रास प्रांत के बराबर समझा जाना चाहिए। यह द्वीप जावा, भरणी द्वीप, पोनियो, श्री शलभ द्वीप, सेलिवीस, मधुरा, बाली, लंबक, संभव आदि जिन द्वीपों का पुराणों में वर्णन आया है, वे सब सुमात्रा के इर्द गिर्द ही बिखरे पड़े हैं।
स्वर्णद्वीप समूह में प्रवेश करते हुए पहला बड़ा द्वीप सुमात्रा ही आता है।
इसका प्राचीन भारतीय नाम श्री विजय है।
बौद्ध सत्रों में इसे जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
उपलब्ध शिलालेख सिद्ध करते हैं कि 7वीं शताब्दी में वहाँ जयनाग राजा राज्य करता था और वह बौद्ध था। चीनी सूत्रों के अनुसार सन 724 में सुमात्रा पर श्रीचंद वर्मा का शासन था।
उसका पुत्र चीनी सम्राट से भेंट करने के लिए गया था।
तत्कालीन चीनी यात्री ईत सिंह के लिखे संस्मरणों से उस क्षेत्र पर हिंदू शासन की पुष्टि होती है। फ्लेमवन बुद्ध की एक पाषाण प्रतिमा अमरावती शिल्पकला के आधार पर बनी प्रतीत होती है।
इस तथ्य तथा उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि सुमात्रा हिंदू उपनिवेश ईसा सन के प्रारंभिक काल में कायम हुआ था।
सुमात्रा में सबसे पहला हिंदू राज्य श्री विजय फ्लेमवन था। इसकी स्थापना 4वीं शताब्दी या उसके पूर्व हुई थी।
इसकी प्रसिद्धि 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में बहुत बढ़ गई थी।
सन 984 में श्रीजेनाग इसके बौद्ध राजा थे। इस राजा की दी घोषणाएं पत्थर पर खुदी हुई प्राप्त हुई हैं। उनकी प्रतिलिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग के पास उपलब्ध हैं। ईटसिंग ने लिखा है कि दक्षिणी सागर के द्वीपों में श्रीविजय बौद्ध शिक्षा एवं विद्या का केंद्र था और वहां के राजा के पास भारत और श्रीविजय के बीच चलने वाले व्यापारी जहाज थे। मलाया प्रायद्वीप के लिगोर क्षेत्र में प्राप्त शिलालेख सन 775 से प्रकट होता है कि श्रीविजय के बौद्ध राजा का प्रभाव मलाया के बिंदोव खाड़ी तक 775 से पूर्व हो गया था। चीनी इतिहास के अनुसार सुमात्रा के कांतोली के राजा बर्नुंड ने 434 और 464 के बीच रुद्र नामक एक राजदूत चीन भेजा था। सुमात्रा पर लीडेन की दी आर्कियोलॉजी ऑफ हिंदू सुमात्रा और स्टिटीरियम की ए जावानीज पीरियड इन सुमात्रन हिस्ट्री में ऐसे प्रामाणिक वर्णन विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए गए हैं जो उस क्षेत्र पर भारतवर्ष के सांस्कृतिक आधिपत्य की भली प्रकार पुष्टि करते हैं। इतिहास विज्ञानी एल्फिंस्टन के अनुसार भारतीय राजा सुमित्रा ने उस देश में शासन व्यवस्था कायम की और उसी के नाम पर उसका नाम सुमात्रा पड़ा।
उस देश में पाए जाने वाले प्राचीन खंडहरों में से अधिकांश शिव मंदिर हैं। कुछ बौद्ध मंदिर हैं, पर वे संख्या की दृष्टि से बहुत कम हैं।
सुमात्रा में अभी भी राम सीता सुग्रीव रुद्र शिव महादेव महेश भवानी दुर्गा के मंदिर मौजूद हैं और उनकी यथावत पूजा होती है।
उन देशों में मुसलमानों की आबादी भी काफी है, पर उनके रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। सुमात्रा के पास ही बाली और लंबर द्वीप हैं, इनमें हिंदू धर्मानुयायी रहते हैं। ये शैव हैं।
वर्ण व्यवस्था प्रचलित है।
ओंकार जप मूर्ति पूजा शालिवाहन संवत्सर का प्रचलन तथा प्रथा परंपराओं में भारतीय संस्कृति की छाप मौजूद है।
ओम शिव चतुर्भुज का मंत्र जप लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धापूर्वक किया जाता है। बोनियो में भारतीयता। जावा के समीप ही एक बड़ा द्वीप है बोनियो। जावा की तुलना में उसका क्षेत्रफल प्रायः 8 गुना अधिक है, किंतु आबादी 50 लाख के लगभग ही है। इसमें महाकाम नदी के तट पर कोती जिले में मुआ कमन स्थान पर 4 शिलालेख मिले हैं।
वे 4वीं शताब्दी के हैं।
इनमें राजा मूलवर्मन द्वारा किए गए 7 बहुसुवर्णक यज्ञों की प्रशस्ति का वर्णन है। इसी क्षेत्र में एक सोने की विष्णु प्रतिमा मिली है। कॉम्बन की विशाल गुफा में 2 प्राचीन भवन मिले हैं जिनमें शिव गणेश स्कंद महाकाल ब्रह्मा अगस्त्य आदि की पत्थर की बनी 12 प्रतिमाएं पाई गई हैं। ये मूर्तियां विशुद्ध भारतीय शैली की हैं। इसी प्रकार सपदक संगत वत्पहल आदि में मिले लेखों से सिद्ध होता है कि 4वीं शताब्दी में वहां हिंदू राजाओं का शासन था और प्रजा में हिंदू धर्म फैला था। बोनियो में उपनिवेशीकरण के प्रमाण में संस्कृत के 7 शिलालेख कोती जिले में राम मंदिर के खंभों पर खुदे मिले थे।
ये खंभे यज्ञ यूप के रूप में ब्राह्मणों ने स्थापित किए थे और इनमें राजा मूलवर्मन के यज्ञ की प्रशंसा की गई थी।
ये शिलालेख सन 400 के हैं। इनसे प्रकट होता है कि उस समय बोनियो में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव अच्छी तरह जम गया था।
इसके अतिरिक्त कोटी जिले में कोटा बंगन स्थान में गुप्त कला पर आधारित बुद्ध की कांसे की एक प्रतिमा मिली है।
पूर्वी बोनियो के अन्य क्षेत्रों से भी प्राचीन हिंदू संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पश्चिमी बोनियो की कपूस नदी की घाटी में हिंदू राज्यकाल के पुरातत्वीय अवशेष पाए गए हैं। इनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि इस क्षेत्र में एक समृद्धशाली हिंदू राज्य दीर्घकाल तक कायम रहा।
बोनियो के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू लोग ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में बसे हुए थे।
बोनियो, जिसे चीनी लोग पोन्नी नाम से जानते थे, वायु पुराण अध्याय 48 में वहर्णी द्वीप के नाम से वर्णित है।
बोनियो की गुफाओं में अब भी भारतीय अवशेष विद्यमान है।
वहां अगस्त्य ऋषि की पूजा होती है। आज का अनाम प्राचीन काल का चंपा हिंदू राज्य, सुदूर पूर्व के वर्तमान अनाम देश का प्राचीन नाम चंपा है। वो चिन्ह पहाड़ों पर उपलब्ध एक शिलालेख से स्पष्ट है कि उस देश पर सन 192 में श्रीमान नामक हिंदू राजा का राज्य था। इसके बाद सन 380 में धर्मराज भद्रवर्मा के शासन के प्रमाण मिलते हैं। इसका पुत्र गंगराज था, जो वैरागी हो गया। इस अव्यवस्था से चीनियों ने लाभ उठाया। उन्हें आक्रमण करके भारीकूट खेत पर कब्जा जमाया, किंतु यह स्थिति देर तक न रही, आक्रमणकारी खदेड़ दिए गए। 529 में रुद्रवर्मा शासनारूढ़ हुआ। इसके बाद शंभू वर्मा, प्रकाश वर्मा, विक्रांत वर्मा का राज्य वर्णन मिलता है। इस वंश का शासन सन 870 तक चलता रहा।
इसके बाद भृगुवंशी राजाओं की परंपरा आरंभ हुई।
पहला राजा पृथ्वीन्द्र वर्मा था। इंद्र वर्मा तृतीय, परमेश्वर वर्मा, श्रीहरि वर्मा, जय सिंह वर्मा, जय परमेश्वर वर्मा, जय इंद्र वर्मा इसी वंश के थे। सन 1912 तक वे लोग शासन करते रहे।
इसी बीच कंबोडिया के अनाम पर कई आक्रमण हुए, जिससे दोनों देशों को भारी क्षति पहुंची।
सन 1282 में मंगोल लोगों का आक्रमण हुआ।
इन लोगों से निपटते हुए यह वंश 1390 तक अपना शासन चलाता रहा। प्राचीन काल में चंपा और अनाम दो पृथक देश होने का विवरण मिलता है, पर वे इन दिनों एक ही बन गए हैं।
इसके बाद वहां अनामी वंश के बौद्ध राजा राज्य करने लगे।
चंपा राज्य की सभ्यता के आदि संस्थापक चाम वर्ग के लोग अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। दक्षिण वियतनाम में अभी भी उनकी संख्या 5000 से ऊपर है।
उनकी सभ्यता अभी भी हिंदू धर्म के अनुरूप है।
किसी समय इन्हीं के पूर्वजों का समस्त वियतनाम पर अधिकार था।
सन 192 के अभिलेखों में इनके शौर्य, साहस और वर्चस्व का विवरण भली प्रकार उपलब्ध है।
चंपा का नामकरण चंपक, जिन्हें आप चाम कहते हैं, के वर्चस्व को ध्यान में रखकर किया गया प्रतीत होता है।
मृतकों का दाह संस्कार, कन्याओं को उत्तराधिकार, मातृवंश प्रचलन, कर्ण कुंडल, उत्तरीय वस्त्र, पूजा उपासना जैसी विशेषताओं को देखते हुए उन्हें उस क्षेत्र में प्रचलित वर्तमान सभ्यता से एक तरह पृथक ही कहा जा सकता है।
यूं उस क्षेत्र में अभी इस नाम का वर्चस्व है और वहां के निवासियों का आचार विचार व्यवहार भिन्न है। इतने पर भी यह थोड़े से लोग अपनी प्राचीन विशेषताओं को अक्षुण्य रखे हुए हैं, इसे उनके जातीय गौरव की अद्भुत विशेषता ही कहा जाएगा। दानांग बंदरगाह पर चाम सभ्यता का अच्छा संग्रहालय है, जिसे देखने से उस देश की प्राचीन गाथा के चित्र आंखों के सामने घूम जाते हैं। चंपा राज्य में अभी भी ऐसे प्राचीन मंदिर कितने ही उपलब्ध हैं जिन पर भारतीय सभ्यता की स्पष्ट छाप है। सेगांव से उत्तर की ओर ह्यू नगर के समीपवर्ती क्षेत्र में ऐसे अवशेष बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं जिन्हें बिना किसी संकोच के हिंदू धर्मानुयायियों द्वारा विनिर्मित कहा जा सकता है। समझा जाता है कि चंपा नाम उस देश का इसलिए पड़ा कि वहां धाम जाति के लोग निवास करते थे।
आदिवासियों को किरात कहा जाता था।
धाम और किरातों का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है, पर जो कुछ प्रमाण सूत्र मिले हैं उनसे प्रतीत होता है कि वे आर्यवंशी लोग थे और भारतीय धर्म मान्यताओं का अनुकरण करते थे।
उनका व्यवस्थित इतिहास दूसरी शताब्दी से लेकर अब तक का उपलब्ध है।
इस अवधि में वहां भारतीयों के अथक प्रयत्नों से उस क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास उभरता चला आया है।
शासन तंत्र वहां दूसरी सदी में स्थापित हुआ। उसका संस्थापक भारतीय राजा श्रीमान था। इसके बाद वहां वर्मन उपाधिधारी राजा राज्य करते चले आए। शासन तंत्र की स्थापना के समय ही वहां डांगडुंग के भव्य मंदिर बने, जिनमें प्रधानतया शिव के साथ अन्य देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थीं। चंपा का जो ऐतिहासिक विवरण प्राप्त है उसके अनुसार वहां भारतीय समाज व्यवस्था के आधार पर ही प्रथा परंपराएं प्रचलित रही हैं। वर्ण व्यवस्था, पर्व त्योहार, वेशभूषा, विवाह अंत्येष्टि आदि की रीति नीति वैसे ही थी जैसी भारत में पाई जाती थी। उसके प्रमाण तत्कालीन साहित्य, अवशेष, लेख एवं चित्र देखने से सहज ही प्रचुर परिमाण में मिल जाते हैं।
उस देश की राजभाषा संस्कृत रही है।
महत्वपूर्ण राजकीय आज्ञापत्र तथा शिलालेख उसी भाषा में लिखे जाते रहे हैं। अब तक चंपा में लगभग 200 शिलालेख मिले हैं। उन सबकी भाषा संस्कृत तथा लिपि देवनागरी है। उस देश के राजा न केवल धर्मनिष्ठ होते थे, वरन उन्होंने धर्मशास्त्रों के गहन अध्ययन में भी विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।
संस्कृत के विद्वान तो उनमें से अधिकतर होते ही थे। चंपा में प्राचीन काल के राजाओं में भद्रवर्मन एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे।
उनका पूरा नाम धर्म महाराज श्री भद्रवर्मन था। उनका राज्य उत्तरी तथा मध्य चंपा, अमरावती एवं विजय प्रांतों और संभवतः दक्षिण में पांडुरंग प्रांत पर भी कायम था। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह था कि उन्होंने मायसन में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर चाम लोगों का राष्ट्रीय पूजा स्थल बन गया। राजा भद्रवर्मन ने मंदिर निर्माणकर्ता के नाम पर मूर्ति का नामकरण करने की परंपरा चलाई, जो कि बाद के काल में एक सर्वमान्य प्रथा बन गई।
प्राप्त शिलालेखों में यह वर्णन मिलता है कि राजा भद्रवर्मन चारों वेदों के ज्ञाता थे। इससे यह प्रकट होता है कि वे एक अच्छे विद्वान थे।
सन 605 में चंपा के राजा शंभुवर्मन पर चीनी आक्रमण हुआ, जिसमें चीनी सेनापति लियुफांग ने शंभुवर्मन को बुरी तरह परास्त किया और चंपा की राजधानी से 1350 बौद्ध ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया। चंपा में प्रथम राजवंश राजा रुद्रवर्मन प्रथम के द्वारा सन 529 में स्थापित किया गया था। इस राजवंश के अंतिम राजा रुद्रवर्मन द्वितीय थे, जिनकी मृत्यु सन 749 में हुई।
इस राजवंश के संबंध में बहुत शिलालेख मायसन के पास के क्षेत्र में पाए गए हैं।
रुद्रवर्मन द्वितीय के बाद चंपा राज्य पर पांडुरंग राजवंश का आधिपत्य कायम हुआ। इस राजवंश के संस्थापक राजा पृथ्वींद्र वर्मन थे। इनके उत्तराधिकारी राजा सत्यवर्मन थे। इनके राज्यकाल में जावा के समुद्री आक्रमणकारियों ने मुखलिन मूर्ति से युक्त मंदिर को विशेष रूप से ध्वस्त कर दिया। इसलिए राजा सत्यवर्मन ने शिवमुख लिंगम की एक नई मूर्ति अन्य देवताओं की मूर्तियों के सहित सन 748 में स्थापित की। राजा सत्यवर्मन के बाद राजा इंद्रवर्मन के राज्यकाल में भी जावा के समुद्री आक्रमणकारियों ने भद्राधिपतेश्वर का मंदिर जला दिया था। राजा इंद्रवर्मन ने इस मंदिर में फिर से इंद्रभद्रेश्वर नाम की नई मूर्ति की स्थापना सन 799 में की। उन्होंने वारापुर में इंद्रभोगेश्वर एवं राजा सत्यवर्मन द्वारा निर्मित एक मंदिर में इंद्रपरमेश्वर की मूर्तियां सन 801 में स्थापित की। अंत में राजा इंद्रवर्मन ने शंकर नारायण देव एक ही देह में शिव और हरि का संयुक्त स्वरूप को बहुमूल्य दान का समर्पण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा इंद्रवर्मन के पश्चात एक नया राजवंश भरेगु राजवंश के नाम से राजा इंद्रवर्मन द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया। शुरू में इसकी उपाधि श्री लक्ष्मींद्र भूमिश्वर ग्रामस्वामिन और बाद में चंपा पर आधिपत्य कायम होने के पश्चात श्री विजय इंद्र वर्मा महाराजाधिराज थी। डांगुडुंग शिलालेख से पता चलता है कि इसने एक बौद्ध मंदिर और एक बौद्धमठ का निर्माण कराया था। इससे यह प्रकट होता है कि राजा इंद्रवर्मन द्वितीय का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था, जबकि इसका परंपरागत विश्वास शैवमत के प्रति था। उपरोक्त शिलालेख से यह भी प्रकट होता है कि राजा इंद्रवर्मन द्वितीय ने शिव की मूर्ति की स्थापना की थी। इस शिलालेख में शंभुभद्रेश्वर की स्तुति लिखी हुई है। राजा भद्रवर्मन तृतीय सन 980-910 के राज्यकाल के पुत्र इंद्रवर्मन तृतीय के बारे में कहा जाता है कि वे हिंदू धर्म के छहों दर्शन शास्त्रों बौद्ध दर्शन पाणिनी व्याकरण तथा उसके भाष्य काशिका के बहुत बड़े विद्वान थे। सन 965 में राजा जयेंद्रवर्मन प्रथम ने पोनगर के मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसकी भगवती की स्वर्णमूर्ति जिसे कंबुज आक्रमणकारी उठा ले गए थे उसके स्थान पर पत्थर की मूर्ति की स्थापना की। राजा जयेंद्रवर्मन प्रथम के बाद के कुछ राजाओं के नाम इस प्रकार हैं: राजा परमेश्वर वर्मन इंद्रवर्मन चतुर्थ हरिवर्मन द्वितीय 989-0 विजयश्री 999 श्रीहरि वर्मा देव तृतीय 1010-0 परमेश्वर वर्मन द्वितीय श्री विक्रांत वर्मन चतुर्थ 1030-0 जय सिंह वर्मन जय परमेश्वर वर्मा देव ईश्वर मूर्ति भद्रवर्मन तृतीय रुद्रवर्मन तृतीय हरिवर्मन चतुर्थ अथवा श्रीहरि वर्मा देव प्रिंस थान यान विष्णु मूर्ति या माधव मूर्ति या देवता मूर्ति। इनकी मृत्यु सन 1080 में हुई।
इनकी मृत्यु होने पर वहां की प्रथानुसार इनकी रानियां चिता में कूदकर भस्म हो गईं।
इनके बाद जय इंद्र वर्मा देव परम बोधिसत्व 1081-0 जय इंद्रदेव वर्मा देव परम राजाधिराज हरिवर्मन पंचम सन 1113-0 जयेंद्र वर्मन तृतीय सन 1139-0 रत्नभूमि विजय 1147-0 जयेंद्र वर्मन चतुर्थ जय इंद्रवर्मन पंचम जय परमेश्वर वर्मन द्वितीय 1252-0 जय सिंह वर्मा देव चतुर्थ 1300-1400 वीरभद्र वर्मन 1441-0 मृत्यु महाविजय आदि।
यहाँ के मंदिरों में साधु लोग और सेवकगण भारतीय लंगोटी पहने हुए चित्रित किए गए हैं।
यहाँ वैवाहिक आदर्श, वैवाहिक संस्कार तथा पति पत्नी संबंध भारत के अनुरूप ही थे।
भारत में प्रचलित त्योहारों में से बहुत से त्योहार यहाँ लोकप्रिय थे।
चाम लोगों का मृतक संस्कार भारत में प्रचलित मृतक संस्कार के ही अनुरूप था।
चंपा में भारतीय साहित्य बहुत प्रचलित था।
यहाँ की राज्य भाषा संस्कृत थी।
चंपा में अभी तक प्राप्त 100 से अधिक शिलालेखों से यह तथ्य प्रमाणित होता है।
ये शिलालेख ऐसी वर्णमाला में लिखे गए थे जो कि भारत में प्रचलित थी।
चंपा में भारतीय ग्रंथ बड़ी संख्या में लाए गए थे और उनका अध्ययन किया जाता था। नए संस्कृत ग्रंथों की यहाँ रचना भी की गई थी। इनमें से एक ग्रंथ के नाम के संबंध में पता चला है और उसके अंश भी उपलब्ध हुए हैं।
चंपा के राजागण स्वयं साहित्यिक कार्यों में अग्रणी रूप से रुचि लेते थे।
राजा भद्रवर्मन के संबंध में कहा जाता है कि वह चारों वेदों, बौद्ध दर्शन, पाणिनि व्याकरण और शैवों के सिद्धांत एवं आख्यान में पारंगत था।
राजा श्रीजय इंद्र वर्मा देव चतुर्थ व्याकरण, ज्योतिष, महायान दर्शन और धर्मशास्त्रों, विशेषकर नारदीय एवं भार्गवीय का विद्वान था। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि चंपा में रामायण, महाभारत, शैव, वैष्णव एवं बौद्ध धार्मिक साहित्य, मनुस्मृति तथा पुराणों का अध्ययन बड़ी रुचि के साथ किया जाता था।
संस्कृत शिलालेखों की शैली से यह प्रकट होता है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य, जिसमें संस्कृत काव्य तथा गद्य सम्मिलित है, का पर्याप्त ज्ञान चंपा के विद्वानों को था। चंपा में हिंदू त्रिदेवों में शिव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्राचीन चंपा में मायसन और पो नगर में स्थिति दोनों मंदिर समूह शैव देवताओं को समर्पित हैं। बहुत से शिलालेखों में वर्णन किया गया है कि त्रिदेवों में शिव प्रधान हैं और वे देवों के भी देव, महादेव, हैं।
शिव के सामने इंद्र, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पीछे चंद्रमा और सूर्य एवं बाएं ओर तारागण चित्रित किए गए हैं। शिव का केवल निराकार रूप ही यहाँ प्रचलित नहीं था, वरन शिव का भारतीय साकार स्वरूप भी पौराणिक गाथाओं के सहित प्रचलित था।
एक प्राचीनतम शिवलिंग की पूजा चंपा में राष्ट्रीय देव के रूप में की जाती थी। यह क्रम चंपा के संपूर्ण इतिहास काल में बराबर जारी था। इस लिंग की स्थापना 4वीं शताब्दी के अंत में अथवा 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल में राजा भद्रवर्मन द्वारा की गई थी। इसका नाम भद्रेश्वर रखा गया था और इन्हें मायसन के मंदिर में स्थापित किया गया।
मायसन का मंदिर राष्ट्रीय देवालय तथा भव्य मंदिर समूह का केंद्र बन गया।
यह मंदिर 478 और 578 के बीच किसी समय जला दिया गया था,
परंतु राजा शंभू वर्मन द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। राजा शंभू वर्मन ने प्रचलित प्रथा के अनुसार नई मूर्ति का नाम शंभू भद्रेश्वर रखा।
शंभू वर्मन के बाद के राजाओं जैसे प्रकाश धर्म, इंद्रवर्मन द्वितीय तथा दूसरे राजाओं में उक्त देवों के देव की स्तुति में स्रोतों की रचना करवाने एवं मंदिर को अधिक से अधिक बहुमूल्य दान देने में परस्पर प्रतिस्पर्धा की गई थी। ये देवों के देव चंपा राज्य के संरक्षक देव के रूप में पूजित किए जाते थे।
11वीं शताब्दी के मध्य श्रीशान भद्रेश्वर की पूजा राष्ट्रीय देव के रूप में होने लगी। श्रीशान भद्रेश्वर संभवतः शंभू भद्रेश्वर का ही नया नाम था। जय इंद्रवर्मन चतुर्थ ने श्रीशान भद्रेश्वर के मंदिर को चांदी से अलंकृत किया और मंदिर के शिखरों को सोने से मढ़ा।
शिवलिंग जिसे चंपा में राष्ट्रीय देव की प्रतिष्ठा प्राप्त थी, के अतिरिक्त अन्य छोटे देवताओं की मूर्तियां भी यहीं प्राप्त हुई हैं।
इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय पो नगर में स्थित शंभुमुखलिंग है। 1700 ईस्वी के एक शिलालेख से प्रकट होता है कि इस मुखलिंग की स्थापना राजा विचित्र सागर द्वारा की गई थी। अन्य दो शिलालेखों से इनकी स्थापना की निश्चित तिथि के संबंध में ज्ञान होता है। इसके अनुसार इसकी स्थापना द्वापर युग के वर्ष में अर्थात करीब 1,780,500 वर्ष पूर्व हुई थी। सन 774 ई.E. में यह लिंग ध्वस्त कर दिया गया था, पर राजा सत्यवर्मन ने इसे पुनस्थापित किया और इसका नाम सत्यमुखलिंग रखा गया। चंपा के राजागण प्राचीन काल में इन प्रसिद्ध लिंगों को न केवल दान देना एवं इनका संरक्षण करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे, वरन नए लिंगों की स्थापना को भी अपना धर्म मानते थे।
इस तरह से एक सर्वमान्य प्रथा सी बन गई थी कि जब कभी कोई राजा नई मूर्ति की स्थापना करता था, तब उस नई मूर्ति के साथ राजा का नाम जोड़ दिया जाता था। भारत में इस प्रथा के संबंध में जानकारी थी। शिव के साथ अन्य बहुत से देवी देवताओं को जोड़ दिया था। इन सबों में शिव की शक्ति का स्थान सब में अधिक महत्वपूर्ण था।
इन्हें उमा, गौरी, भगवती देवी एवं महादेवी नामों से संबोधित किया जाता था। उन्हें मातृलिंगेश्वरी एवं भूमीश्वरी में भी कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि चंपा के दक्षिणी क्षेत्र कोठारा में शक्ति पूजा कुछ बहुत व्यापक रूप में प्रचलित थी। यही रूपनगर देवी अथवा भगवती कोठारेश्वरी की मूर्ति पो नगर के मंदिर में स्थापित थी। यह मंदिर चाम लोगों का राष्ट्रीय पूजा स्थल बन गया था। इसकी तुलना शंभू भद्रेश्वर अथवा श्रीशान भद्रेश्वर मंदिरों से की जा सकती थी। शिव पूजा के साथ संबंध दूसरे देवता गणेश या विनायक थे।
चंपा में गणेश की मूर्तियां इतनी अधिक संख्या में विद्यमान हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि चंपा में गणेश की पूजा उनकी माता उमा की पूजा से अधिक लोकप्रिय थी।
चंपा के तीसरे लोकप्रिय देवता कार्तिक या कुमार थे। अभी तक इनकी 4-5 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
इनमें से दो मूर्तियों के साथ उनका वाहन मोर भी है। शिव और उमा के वाहन नंदिन की मूर्तियां भी मंदिरों में बड़ी संख्या में पाई गई हैं।
चंपा में वैष्णव धर्म को प्रतिष्ठा का वह स्थान प्राप्त नहीं था जो कि शैव धर्म को प्राप्त था। फिर भी चंपा में वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया था। विष्णु को विभिन्न नामों से जैसे पुरुषोत्तम हरि माधव गोविंद से संबोधित किया जाता था। परंतु भारत की तरह ही यहाँ भी विष्णु भगवान के अवतारों को स्वयं विष्णु से अधिक महत्व दिया जाता था।
इन अवतारों में राम और विष्णु ने अपने को चार रामों अर्थात राम और उनके तीन भाई के रूप में विभाजित कर दिया था। कृष्णावतार में विष्णु की वीरतापूर्ण लीलाओं की बहुत प्रतिष्ठा है। चंपा के राजागण अपनी तुलना विष्णु से करने में बहुत हर्षित होते थे।
कभी कभी वे स्वयं को विष्णु का अवतार मान लेते थे। इस प्रकार राजा जय रुद्रवर्मन को विष्णु का अवतार माना जाता था और उनका पुत्र श्री जयहरिवर्मादेव शिवानंदन स्वयं को विष्णु का विशेष अवतार मानता था। विष्णु के संबंध में यह मान्यता थी कि वे चारभुजा वाले देव हैं जिनका वाहन गरुड़ है।
परंतु कभी कभी वे क्षीर सागर पर असंख्य फन वाले शेषनाग वासुकी पर शयन करते हैं।
विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी चंपा की प्रसिद्ध देवी थी।
इन्हें पद्मा एवं श्री नामों से भी संबोधित किया जाता था।
इनका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। शिव के वाहन नंदिन के समान ही विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति भी चंपा में लोकप्रिय भी।
चंपा के शिलालेखों में हिंदू त्रिदेवों के तीसरे देव ब्रह्मा का सृष्टिकर्ता के रूप में उल्लेख मिलता है, परंतु इन्हें कोई विशेष प्रतिष्ठा का स्थान चंपा में प्राप्त नहीं था। ब्रह्मा की मूर्ति की विशेषता थी उनका चार मुखों वाला होना, हाथ में माला और कमल की नाल का होना और साथ में हंस का वाहन के रूप में होना।
यद्यपि हिंदू त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की ही विशेष रूप से पूजा की जाती थी, फिर भी छोटे देवी देवताओं जैसे इंद्र यम चंद्र सूर्य कुबेर एवं सरस्वती की पूजा भी की जाती थी। चंपा में शिव विष्णु आदि की मूर्तियों के बावजूद निराकार परमात्मा की भी धारणा विद्यमान थी जिसका उल्लेख एक शिलालेख में मिलता है।
चंपा में यज्ञों के करने पर विशेष जोर दिया जाता था। यज्ञों की महिमा की प्रशंसा बार बार की गई थी।
ऐसा भी प्रतीत होता है कि भारतीय तत्वचिंतन के निवृत्ति मार्ग का चाम लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि चंपा के राजाओं एवं कुलीन जनों ने किस तरह संसार के सभी परार्दों जैसे धन वैभव सत्ता तथा सांसारिक लाभों की क्षणभंगुरता एवं नश्वरता की भावना से प्रेरित होकर धार्मिक पुण्य कर्मों को पाप कर्मों के प्रायश्चित स्वरूप एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु अथवा शिवलोक प्राप्त हेतु प्रधान कर्तव्य माना था। चंपा में बुद्ध विभिन्न नामों से जिन लोकनाथ लोकेश्वर सुगत शाक्यमुनि अभिताभ वज्रपाणी विरोचन एवं प्रमुद्रित लोकेश्वर से संबोधित किए जाते थे। चंपा के लोगों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी गहराई से था। इस तथ्य की पुष्टि इस ऐतिहासिक घटना में होती है कि विजयी चीनी सेनापति लियफंग सन 605 ईस्वी में 1350 बौद्ध ग्रंथ चंपा से लूटकर अपने साथ चीन ले गया था। यह प्रकट है कि चंपा में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण एवं सहायता पर्याप्त रूप में प्राप्त थी। फलस्वरूप बुद्ध की मूर्तियां तथा बौद्ध मंदिर राजाओं एवं चंपा निवासियों द्वारा निर्मित किए गए। चंपा में बौद्ध भिक्षुकों का शक्तिशाली संघ विद्यमान था। जनश्रुति के आधार पर ज्ञात होता है कि चंपा राज्य के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों का निर्माण हुआ था। राजा श्री जय इंद्रवर्मन ने सन 875 ईस्वी में लोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति को जिसे उनके नाम पर लक्ष्मींद्र लोकेश्वर कहा जाता था स्थापित किया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया था। यह प्रकट है कि डांगडुंग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
वहां की खुदाई करने पर एक बौद्ध मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई चंपा के सबसे ब्रह्मणीय मंदिर से भी अधिक है। खंडहरों के बीच में से बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
डांगडुंग में प्राप्त बुद्ध की एक प्रतिमा करीब 5 फीट ऊंची है।
डांगडुंग में ही बुद्ध की एक सुंदर खड़ी मूर्ति कांसे की बनी हुई प्राप्त हुई है। बुद्ध की यह सुंदर मूर्ति चंपा में अभी तक प्राप्त मूर्तियों में कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।
चंपा में धार्मिक विकास की यह खास विशेषता थी कि वहां प्रारंभ से अंत तक विभिन्न धार्मिक संप्रदायों एवं धर्मों में धार्मिक सहिष्णुता का उदार भाव विद्यमान था। चंपा में कई धार्मिक संप्रदायों एवं मतों के काया होने के बावजूद बौद्ध धर्म के साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म के दो अथवा तीन प्रभावशाली संप्रदाय फलते फूलते विद्यमान थे।
पर धर्म के क्षेत्र में उनके बीच परस्पर कभी किसी प्रकार का तनाव एवं खिंचाव नहीं रहा।
इसके बिल्कुल विपरीत विभिन्न धर्म एवं मतों के अनुयायीगण परस्पर एक दूसरे के प्रति उदारता एवं सम्मान की उच्च भावना से अनुप्राणित थे। राजागण सभी धर्मग्रंथों एवं मतों की सर्वोत्तम बातों को ग्रहण करते थे। इस प्रकार से राजा प्रकाश धर्म ने शिवलिंग की स्थापना के साथ ही साथ विष्णु का एक मंदिर भी निर्माण करवाया। राजा इंद्रवर्मन ने शैव तथा बौद्ध धर्मों के प्रति समान रूप से आदर का भाव प्रदर्शित किया।
इस तरह के बहुत से उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ के निवासियों ने राजाओं के आदर्श का अनुकरण किया।
इस विषय में भारतीय उपनिवेशिकों ने अपनी मातृभूमि भारत की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं का पालन किया।
चंपा में कंबोडिया तथा जावा के समान प्राचीन संस्कृति की याद दिलाने वाले भव्य स्मारक यद्यपि अब प्राप्त नहीं, क्योंकि यहाँ चंपा के प्राचीन स्मारक ईंटों से बने होने के कारण करीब करीब नष्ट से हो चुके हैं। यद्यपि उनके जो भी अवशेष अभी भी विद्यमान हैं, उनसे प्रकट है कि इन प्राचीन स्मारकों की कला काफी विकसित थी। चंपा के लोग अधिकतर मंदिरों एवं देवी देवताओं की मूर्तियों को अलंकृत करने एवं सजाने धजाने में अपनी कलात्मक चतुराई एवं साधनों का उपयोग करते थे। चंपा के सभी मंदिरों की निर्माण कला सामान्य रूप से एक ही सी है। वे प्रायः ईंटों से बने हुए हैं।
इनका मुख प्रायः पूर्व दिशा की ओर होता है।
चंपा में तीन मुख्य वर्गों के मंदिर हैं, जिनमें प्रथम वर्ग में माइसन डांग डांग तथा पो नगर के मंदिर हैं, दूसरे वर्ग में बौद्ध मंदिर हैं एवं तीसरे वर्ग में दो शैव मत के मंदिर हैं।
माइसन वर्ग के मंदिर टूरन्ने से 21 मील दूर दक्षिण दक्षिण पूर्व में घाटी में स्थित हैं।
माइसन में मंदिरों की संख्या 30 से अधिक है।
डांगडन के ध्वंसावशेष माइसन से 22 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित हैं।
इसके चारों ओर ईंटों की दीवार बनी हुई है जिसमें पूर्व की दिशा में एक द्वार है। मध्य में बने भवन के अत्यंत पश्चिम में प्रधान पूजा स्थल है, जिसके चारों ओर चार पूजा स्थल एक ही चबूतरे पर बने हुए हैं। यहाँ अन्य दो और मंदिर बने हुए हैं। भीतरी आंगन में सात मंदिर बने हुए हैं। खनहो जिले में नहटूंग के पासपो नगर में पहाड़ी की चोटी पर दो कतारों में छह मंदिर बने हुए हैं। इन सब मंदिरों के चारों ओर दीवार बनी हुई है।
चंपा में मंदिर निर्माण कला बहुत विकसित थी।
इस कला के सुंदर नमूने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो कि बड़ी संख्या में चंपा देश के प्रत्येक भाग में प्राप्त हुई हैं। कहीं कहीं मंदिरों की कलापूर्ण सजावट बहुत श्रेष्ठ कोटि की है। बाली में धर्म विस्तार। जावा से 100 मील से कम दूरी पर पूर्व में एक छोटा सा द्वीप है बाली।
इसकी लंबाई 53 मील, चौड़ाई 50 मील और जनसंख्या लगभग 15 लाख है। यहाँ अभी भी भारतीय सभ्यता यथावत अक्षुण है।
जबकि इस्लाम ने स्वर्णद्वीप के सभी क्षेत्रों को रौंद डाला, तो भी बाली में किसी प्रकार हिंदू सभ्यता यथावत बनी हुई है और यथास्थान खड़ी हुई है। यहाँ के प्राचीन मंदिर अभी भी गर्वोन्नत मस्तक रखे हुए खड़े हैं, अन्य देशों की तरह धर्मांध लोगों द्वारा तहस नहस नहीं किया गया है।
इतिहासकार पैलिया के अनुसार बाली की राजकुमारी भारत के राजा शुद्धोधन के साथ विवाही थी।
उसी का शासन इस देश में चलता था।
बाली का क्षेत्रफल 20.95 वर्ग मील है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है।
पूरा देश एक सुंदर बाग की तरह दिखता है। बाली ही एक ऐसा द्वीप है जहाँ अभी तक प्राचीन हिंदुओं की संस्कृति तथा सभ्यता व्यापक रूप में कायम है। इस देश में इस्लाम प्रवेश करने में असमर्थ रहा। इस देश की प्राचीन हिंदू संस्कृति पर खोजपूर्ण गहन अध्ययन करने की अभी भी बड़ी गुंजाइश है।
लियड राजवंश 502-556 के चीनी इतिहास में सबसे पहले पोली का वर्णन मिलता है, जो कि बाली का चीनी नाम है।
चीनी विवरण से बाली देश के राजा के संबंध में रोचक वर्णन मिलता है।
उक्त चीनी विवरण से निश्चित रूप में यह प्रमाणित होता है कि बाली द्वीप में हिंदू राजाओं का राज्य था जो कि बौद्ध धर्म मानने वाले थे। यह राज्य शताब्दी ईस्वी में कायम था, क्योंकि उस देश के राजा ने 518 ईस्वी में अपना एक दूत चीन भेजा था।
चीनी यात्री आइटसिंग ने लिखा है कि दक्षिण सागर के द्वीपों में बाली भी एक ऐसा देश था जहां मूल सर्वास्तवाद निकाय का पूर्ण रूप से सब लोगों द्वारा पालन किया जाता था। सबसे शुरू के चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि बाली द्वीप में 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म कायम था। इसलिए यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि बाली द्वीप में हिंदू उपनिवेश की स्थापना की प्रारंभिक शताब्दियों में ही बौद्ध धर्म ने अपनी नींव वहां पक्के रूप में जमा ली थी।
हाल की जांचों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि बाली एक हिंदू उपनिवेश था जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी। यह संस्कृति भारत से सीधे ग्रहण की गई थी। बाली से संबंधित शिलालेखों की भाषा प्राचीन बालानी है, न कि प्राचीन जावानी।
इस तथ्य से यह धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि बाली ने अपनी हिंदू संस्कृति जावा के माध्यम से प्राप्त की थी।
बाली का विकास हिंदू उपनिवेश के रूप में स्वतंत्र रूप से हुआ था और साथ ही साथ जावा और सुवर्णद्वीप के अन्य द्वीपों के साथ भी उसका विकास हुआ था।
इसमें कोई संदेह नहीं कि बाली पर जावा का आधिपत्य बराबर कायम होता रहा, जिसके फलस्वरूप इन दोनों पड़ोसी देशों में निकट का संबंध बना रहा।
ज्ञात इतिहास के आधार पर यह निश्चित रूप से पता चलता है कि केशरी वर्मा देव बाली के प्रथम राजा थे। 914 ईस्वी सन 134 ईस्वी में ही बाली जावा साम्राज्य का अंग बन गया था।
इसके बाद में दोनों द्वीपों की राजनीति तथा संस्कृति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़ गई।
बाली इस तरह जावा के साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया। बाली में जावानी साहित्य का महत्व दिनों दिन बढ़ता गया, परंतु जावा में उसके साहित्यिक जीवन का ह्रास होता गया।
जावा की परंपराओं को बाली ने आगे बढ़ाया और उसका विकास किया। इस्लाम के बढ़ते चरण का मुकाबला न कर सकने के कारण मजपहित जावा के राजा ने अपने साथियों सहित बाली में शरण ली। जावा के निवासी भी एक बड़ी संख्या में अपनी संस्कृति और धर्म के रक्षार्थ बाली चले गए और वहां ही बस गए। इस तरह से बाली हिंद जावानी संस्कृति और सभ्यता का अति महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जो कि आज तक कायम है। बाली में हिंद जावानी संस्कृति का न केवल और अधिक विकास हुआ, वरन उसने बाली ने उसे लुप्त होने से बचा लिया।
जावा में इस्लाम धर्म के प्रसार के फलस्वरूप हिंद जावानी संस्कृति वहां से लुप्त ही हो गई।
नवरुचि बाली द्वीप का एक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें भीम के द्वारा युद्धों में प्राप्त विजयों का वर्णन है। प्राचीन जावानी भाषा में रामायण ग्रंथ के उत्तरकांड का पद्य में अनुवाद है।
पौराणिक वर्ग के ग्रंथों में ब्राह्मण पुराण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
इसकी रचना भारतीय पुराणों के आदर्शानुरूप की गई है, यद्यपि इसमें इधर उधर जावानी प्रभाव भी है।
इस वर्ग की दूसरी रचना अगस्त्य पर्व है, जिसमें अगस्त्य अपने पुत्र दृद्युस्यु से सृष्टि रचना के संबंध में पौराणिक शैली में वर्णन करते हैं।
बाली में भारतीयता की पहुंच तथा प्रगति के ऊपर सिलिमिन लेबी की संस्कृत टेक्स्ट्स फ्रॉम बाली पुस्तक अच्छा प्रकाश डालती है। हिंदू धर्म आज भी बाली का एक जीवित धर्म है, इसलिए यहाँ हिंदू धर्म के क्रियात्मक पक्ष के संबंध में जावा से कहीं अधिक विवरण प्राप्त होते हैं। बाली निवासियों के जीवन में धार्मिक कर्मकांड एवं क्रियाओं का विशेष स्थान है। बाली में प्रचलित पूजा पारिवारिक एवं सार्वजनिक दो प्रकार की होती है, जिसमें पारिवारिक पूजा की कोटि में सबसे अधिक महत्व सूर्य सेवन या शिव की सूर्य रूप में पूजा है। सूर्य सेवन के अतिरिक्त पारिवारिक धार्मिक कर्मकांडों में वे सब संस्कार भी किए जाते हैं, जो कि गृह सूत्र में बताए गए हैं और जिनका पालन मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार कांछेदन संस्कार विवाह मृतक तथा दाह संस्कार के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक पूजा के लिए प्रत्येक जिले में 3 या 4 सार्वजनिक मंदिर हैं।
पूर्वजों की पूजा बाली धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है।
प्रत्येक घर में 1 या 1 से अधिक छोटे मंदिर पूर्वजों के लिए बने होते हैं। भारतीय पूजा में उपयोग में आने वाली सहायक सामग्रियों जैसे घृत कुश घास और मधु बाली में भी पूजा सामग्री माना जाता है। भारत की पवित्र नदियों जैसे गंगा यमुना सिंधु कावेरी सरयू तथा नर्मदा के नामों के अनुरूप बाली की नदियों के नाम भी रखे गए हैं।
देखिए हिंदू कल्चर इन ग्रेटर इंडिया द्वारा सदानंद पृष्ठ 19-20 संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बाली से उद्धृत बाली में प्रचलित संस्कृत के सूत्र। शिवस्तव ओम नमः शिवाय शर्वाय देवदेवाय वै नमः रुद्राय भुवनेशाय शिवरूपाय वै नमः जागृत स्वप्न सुषुत जायते च पृष्ठ 20 भैरवस्तव महाभैरवरूपश्च शिरशांतकम् पृष्ठ 20-21 महादेवस्तव ओम नमोस्तु ते महादेव क्षमानुग्रह कारण पृष्ठ 21 उमास्तव ओम पार्वती नमो नमः पृष्ठ 21-22 श्रीस्तव ओम श्री देवी नमोस्तु ते बालीद्वीप के प्रचलित पुरोहितों पाइंदा में प्रचलित संस्कृत मंत्र महादेव डॉट 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 निष्फल ध्यानी बुद्ध सकल बुद्ध का आवाहन मंत्र ओम कसोल नमः स्तोत्र वेद शिवस्तव परम शिवस्तव।
बाली में पाइंदा या पुरोहित द्वारा पूजा कराई जाती है।
ये पाइंदा ब्राह्मण ही होते हैं।
बाली में अभी भी हिंदू धर्म का बाहुल्य है। राजधानी के नाम पर इस द्वीप का नामकरण हुआ है। विवाहों में संस्कृत के वेद मंत्र बोले जाते हैं। मुर्दों को जलाया जाता है और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। देव प्रतिमाओं की समय समय पर शोभा यात्रा निकलती रहती है। रामलीला की धूम रहती है। बाली को देवताओं का द्वीप कहा जाता है।
यहाँ की केचिक शैली के रामायण अभिनय बहुत आकर्षक होते हैं।
यहाँ की प्राचीन भाषा केवी में उपलब्ध रामायण के संदर्भ में लिखे गए ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक पाठ पारायण किया जाता है।
लगभग 1000 वर्ष पूर्व योगेश्वर नामक कवि ने रामायण कथानक पर ग्रंथ लिखे थे जो अभी भी लोकप्रिय हैं।
यहाँ के मंदिरों के पुजारी धार्मिक कृत्य तो करते हैं, पर आजीविका की दृष्टि से पूजा या दान दक्षिणा पर निर्भर नहीं रहते। वे कृषि, लकड़ी का काम, नक्काशी अथवा जो भी काम अनुकूल पड़े उत्साहपूर्वक करते हैं। इससे उनके सामाजिक सम्मान में कोई कमी नहीं आती। मंदिरों में छोटे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी रहती है।
पुजारी प्रायः ब्राह्मण वर्गों के होते हैं। 1 पाइंदा 2 सेनक गहू 3 पामाकू। पाइंदा पारिवारिक धर्मानुष्ठान की व्यवस्था बनाते हैं।
पामाकू मंदिरों की सेवा पूजा का उत्तरदायित्व संभालते हैं और चिकित्सा शिक्षा आदि उपयोगी कार्यों में निरत रहते हैं। शिव इस देश के मान्य देवता हैं। ब्राह्मण तथा दूसरे लोग यहाँ यज्ञोपवीत धारण करते हैं, किंतु उसे अत्यंत पवित्र मानकर पेटियों में बंद रखते हैं और विशेष धार्मिक आयोजनों के समय ही धारण करते हैं। यहाँ के पुरुषों और स्त्रियों के नाम प्रायः भारतीय नामों से ही मिलते जुलते होते हैं।
घर घर वस्त्र बुनना यहाँ का कुटीर उद्योग है। स्याम थाईलैंड एकमात्र बौद्ध राष्ट्र। थाईलैंड स्याम संसार का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बौद्ध धर्म राजधर्म भी है।
अन्य देशों ने तो भारत की परंपरागत संस्कृति इन थोड़े ही दिनों में गंवा दी, पर यह अकेला देश ऐसा है जिसमें वर्तमान भारत की परिधि से आगे जाकर यह देखा जा सकता है कि प्राचीन काल में भारत की रीति नीति का क्या स्वरूप था। वहां जो देखने को इन दिनों भी मिलता है उससे यह पता लगता है कि भारत किन मान्यताओं और आदर्शों के कारण उन्नति के उच्च स्तर पर पहुंचा था और शांति का संदेश सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने में किन परंपराओं के कारण सफल हुआ। आज कई बातों में थाईलैंड इसे ऐसी शिक्षाएं और प्रेरणाएं दे सकता है जिन्हें अपनाकर हम प्रस्तुत दुर्गति के गर्त से उबर सकते हैं।
उस देश में पहले हिंदू धर्म प्रचलित था, बौद्ध धर्म बाद में पहुंचा। बौद्ध धर्म का प्रवेश सन 422 में हुआ। इससे पूर्व वहां ब्राह्मण धर्म प्रचलित था।
दोनों धर्मों का वहां सुंदर समन्वय हुआ है। दार्शनिक भिन्नताओं को वहां पूरी सहिष्णुता के साथ सहन किया गया है। इतना ही नहीं, उनका परस्पर समन्वय भी भली प्रकार हुआ है। सांप्रदायिक मतभेद के कारण जहां अन्यत्र के लोग विग्रह और विद्वेष खड़ा करते हैं, वहां इस तरह की कभी कोई बात हुई ही नहीं।
बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहोदर भाई की तरह परस्पर प्रेम पूर्वक रहते रहे हैं। बौद्ध धर्म के आगमन से पूर्व वहां हिंदू धर्मानुयायी राजा राज करते थे। राजा धर्माशोक ने भव्य विष्णु मंदिर बनवाया था।
उसके बाद भी अनेक हिंदू राजा देवी देवताओं के मंदिर बनाते रहे जिनका अस्तित्व अभी भी जीवंत इमारतों तथा भग्नावशेषों के रूप में विद्यमान है। फ्रोके के शिव मंदिर की अभी भी ब्राह्मण पुजारी पूजा करते हैं।
बौद्ध वर्चस्व होने पर भी अभी वहां ब्राह्मणों की मान्यता उसी प्रकार है। ब्राह्मण को वहां ब्रह्म कहते थे, पीछे उसी का अपभ्रंश होकर फ्रन्म बन गया। फ्रन्म नाम से वहां ब्राह्मण वर्ग का परिचय मिलता है।
देवनगर उनकी एक पूरी बस्ती ही बसी है। बौद्ध परिवारों में धार्मिक कर्मकांड कराने यह फ्रन्म लोग ही जाते हैं।
हिंदू त्योहार और बौद्ध त्योहार दोनों सर्वसाधारण के लिए समान रूप से हर्षोत्सव का विषय रहते हैं।
मकर संक्रांति, वैसाखी, होली पर पानी उलीचने का, एक दूसरे को भिगोने का उन्माद भारत से घटकर नहीं वरन बढ़ चढ़कर ही देखा जा सकता है। स्थानीय नदियों में गंगा माता की भावना करके वहां के निवासी नदी प्रवाह में दीपक तथा पुष्पों के दोने बहाते हैं। यहां के राजा वर्ष में एक बार जनक की तरह हल चलाते हैं और धार्मिक उत्सव में साधारण नागरिक की तरह सम्मिलित होते हैं।
मुहूर्त और ज्योतिष का प्रचलन वहां भी है। राजकीय समारोहों का पूजा विधान अभी भी वहां ब्राह्मणवंशी राजगुरु ही मंत्रोच्चारण के साथ कराता है। बैंकॉक के एक प्राचीन मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, दुर्गा आदि देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं।
खंडहरों में उपलब्ध कितनी ही देव प्रतिमाएं अब वहां के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ब्रह्मा जी की वहां भारत की तरह उपेक्षा नहीं है, वरन घरों में ब्रह्मा जी प्रतिष्ठापित रहते हैं।
बैंकॉक के प्रधान होटल इरावन के मुख्य द्वार पर ब्रह्मा जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है।
छठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक की अवधि में वहां हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिली हैं जो भारत में प्रमुखता प्राप्त करते हैं। बैंकॉक में ऊंची टेकरी पर बने एक बौद्ध मंदिर में शिवलिंग एवं नांदी की भी स्थापना है और पूजा अर्चा होती है। बुद्ध के बाद उस क्षेत्र के उपासकों में राम का नंबर आता है।
बुद्ध की शिक्षाओं की तरह ही वहां रामायण कथा भी लोकप्रिय है।
लवपुरी में हनुमान की मूर्तियों की भरमार है।
फ्राइसुवन की खुदाई में भगवान राम की मूर्ति मिली है।
बस के टिकटों तक पर राम के चित्र छपे रहते हैं।
बैंकॉक के राष्ट्रीय संग्रहालय के बाहर धनुषधारी राम की विशाल मूर्ति खड़ी हुई है और राष्ट्रीय नृत्य गृह के बाहर वैसी ही विशालकाय गणेश प्रतिमा स्थापित है। कुछ सरकारी विभागों का राज्य चिन्ह गणेश है। कला विभाग के द्वार पर विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित है।
थाईलैंड की आबादी प्रायः 1.5 करोड़ है। उसमें 25,000 भारतीय मूल के बसते हैं, जो ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत से वहां जाकर बसे। उनकी संतानों ने थाई जनता के साथ अपने को पूरी तरह धुला मिला लिया है।
इसका क्षेत्रफल 1,98,000 वर्ग मील है। इसकी सीमाएं बर्मा, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया को छूती हैं।
थाई भाषा में 40% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। इसके अतिरिक्त पाली एवं प्राकृत के शब्द भी बहुत हैं।
वर्णमाला देवनागरी से मिलती जुलती है।
स्वर और व्यंजनों का क्रम भी लगभग वैसा ही है।
भारत की धार्मिक विधि व्यवस्थाओं, पौराणिक कथाओं तथा बुद्धचर्या का उल्लेख करने वाला साहित्य ही प्राचीन काल में वहां लिखा जाता रहा है।
जो भी पुराने हस्तलिखित ग्रंथ वहां मिलते हैं, उनमें यही विषय हैं या कुछ ग्रंथ अन्य विषयों के भी मिले हैं। थाईलैंड के सिनेमा घरों में भारत की धार्मिक फिल्में सफलतापूर्वक चलती हैं।
रामायण कथा की नृत्य नाटिकाएं उस देश में प्रत्येक पर्वोत्सव पर होती रहती हैं।
उसमें राज परिवार के तथा उच्च स्तर के लोग अभिनय करते हैं। जनता उनमें बहुत रस लेती है।
रामचरित्र वहां बच्चे बच्चे को याद है, वहां वह बहुत ही लोकप्रिय हैं।
थाईलैंड के प्राचीन साहित्य में भारतीय कथा पुराणों का छायानुवाद ही भरा पड़ा है।
अधिकांश प्राचीन ग्रंथ बुद्ध उपदेश, आचार विधान एवं जातक कथाओं से संबंधित मिलते हैं।
राजवंशी इतिहास एवं धर्म प्रचारकों के क्रियाकलाप का प्राचीन विवरण प्राप्त करने से यही पता चलता है कि भारतीय मूल के निवासी समय समय पर वहां पहुंचते रहे हैं और देश की प्रगति एवं समृद्धि का आधार बनते रहे हैं। उस देश के मूल नागरिकों को उन्होंने अपने से पृथक नहीं रखा। उनके साथ घुलने तथा उन्हें अपने में घुलाने का ऐसा प्रयत्न करते रहे हैं कि अब थाई जाति का वंशरक्त की दृष्टि से पृथककरण करना संभव नहीं रहा। राजधानी बैंकॉक को मंदिरों का नगर कहा जा सकता है।
यहाँ 300 बड़े बौद्ध मंदिर हैं।
इनमें भिक्षु रहते हैं और धर्म शिक्षा के उपयोगी संस्थानों का संचालन करते हैं।
फ्राकियो मंदिर में नीलम रत्न की बनी राम की बहुमूल्य प्रतिमा है और दीवारों पर रामायण कथानक के भित्तिचित्र बने हैं। दर्शनीय स्थानों में अयोध्या, लवपुरी, विष्णुलोक, समुद्र प्रकरण, प्रथमंग विशेष रूप से आकर्षक हैं। सेनान नदी के बीचोंबीच टापू पर बना बौद्ध मंदिर निर्माणकर्ताओं के जीवन का परिचय देता है।
इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों वाले मंदिरों तथा बौद्ध विहारों का अस्तित्व हर छोटे बड़े स्थान में पाया जा सकता है।
मगध के चंद्रगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इस देश को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। गांधार में पिथल गुफा, बोधि वृक्ष, वृद्धकूट पर्वत आदि के उपलब्ध अवशेषों से उस देश में बौद्ध धर्म की प्राचीनता सहज ही प्रमाणित होती है। मूसीतेप में संस्कृत भाषा के प्राचीन शिलालेख मिले हैं। मापमाबम के उपलब्ध शिलालेख भी उस देश पर भारतीय संस्कृति का वर्चस्व प्रमाणित करते हैं।
बौद्ध और हिंदू धर्म परस्पर इतनी घनिष्ठता के साथ थाईलैंड में घुस गए हैं कि उनकी पृथकता कठिनाई से ही पहचानी जा सकती है।
समन्वय, समझदारी एवं सहिष्णुता की यहाँ जैसी रीति नीति अन्यत्र भी अपनाई गई होती तो सांप्रदायिक विद्वेष का कहीं कोई दृश्य दिखाई न पड़ता और धर्म तत्व के प्रति सहज ही सबकी श्रद्धा जमी रहती।
थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में नारायण, विनायक, शिव, ऋषि आदि की प्रतिमाएं भी हैं और उन्हें क्या बौद्ध क्या हिंदू समान श्रद्धा के साथ पूजते हैं। यहाँ की जनता सरल और धार्मिक वृत्ति की है।
प्रत्येक कार्यालय, आवास स्थान, विद्यालय में यहाँ एक छोटा मंदिर बना होगा जिसे चाउथी कहते हैं।
यहाँ नमन करने के उपरांत ही लोग अपना कार्य आरंभ करते हैं।
राजधानी बैंकॉक में शाही नौसेना के इंटरनेशनल होटल इरावन के प्रवेश द्वार पर चतुर्मुखी ब्रह्मा की भव्य मूर्ति स्थापित ही नहीं, पूजित भी है। नखोन पंथाम नगर के राजोधाम में 12 फुट ऊंचे चबूतरे पर विनायक गणेश की विशालकाय और अत्यंत भव्य प्रतिमा स्थापित है।
यहाँ कोई पुजारी तो नहीं रहता, पर प्रातःकाल यहाँ जो पुष्प बिखरे मिलते हैं उनसे यह सहज ही जाना जा सकता है कि वहाँ के लोग उन प्रतिमाओं के श्रद्धापूर्वक नमन पूजन करते हैं।
थाईलैंड का राजवंश अपने को राम का वंशज मानता है और उसे वहाँ रामाधिपति कहकर पुकारा जाता था। सन 1350 में वहाँ का शासक राम नाम से विख्यात था। उसने अयोध्या नामक राज्य की स्थापना की।
यहाँ के राज मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथाएं खुदी हुई हैं।
उत्तरी थाईलैंड में लवकुशपुरी नामक नगर अभी भी विद्यमान है। थाईलैंड उच्च न्यायालय के सामने गंगाधर महादेव की और आकाशवाणी केंद्र के मुख्य द्वार पर वीणा पाणी सरस्वती की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। राजकीय संग्रहालय के द्वार पर धनुर्धारी राम की विशाल प्रतिमा खड़ी है।
इस देश के संग्रहालयों में शेषशाय विष्णु, शिवलिंग, ऋषि प्रतिमाएं कितने ही आकार प्रकार की विद्यमान हैं।
वैशाखी पूर्णिमा को यहाँ बुद्ध जयंती के उपलक्ष में दिवाली मनाई जाती है। मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ श्राद्ध भी इसी दिन किए जाते हैं।
मृतकों के नाम पर भिक्षुओं को भोजन कराया जाता है।
संक्रांति पर्व, वर्षाव्रत, चंद्र ग्रहण आदि अवतारों पर पर्वोत्सव मनाए जाते हैं।
राजा को वर्ष में एक दिन स्वयं हल चलाकर अपने को सामान्य कृषक वर्ग की श्रेणी का सिद्ध करना पड़ता है। बच्चों का मुंडन संस्कार स्याम में भी भारत की ही तरह होता है। इसे चूड़ा कुंतन मंगल कहते हैं।
इसके अतिरिक्त नामकरण, कर्णवेद, विवाह, अंत्येष्टि आदि संस्कारों में भी भारतीयता का प्रत्यक्ष अनुकरण देखा जा सकता है। यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। उस देश में हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म जिस सुंदर ढंग से मिले हैं, यदि वह प्रक्रिया अन्यत्र भी अपनाई जा सके तो सांस्कृतिक दृष्टि से आज का भारतीय दर्शन विश्व का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, सबसे अधिक प्रचलित दर्शन कहलाने का अधिकारी बन सकता है।
संप्रदायों के बीच विग्रह और विद्वेष उत्पन्न करने की अपेक्षा उनका समन्वय करने में ही लाभ है। यह तथ्य भी हम थाईलैंड में चल रहे प्रयोगों को देखकर सीख सकते हैं। श्रेष्ठता जहां भी मिले ग्रहण कर ली जाए और जो असामयिक है, आज की स्थिति में अनुपयुक्त है, उसके लिए दुराग्रह न किया जाए तो धर्मों का समन्वय एक गुलदस्ते की तरह संसार की शोभा और शालीनता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इन दिनों थाईलैंड में बौद्ध धर्मानुयायी ही राजा है और उसी धर्म को मानने वाली अधिकांश प्रजा है।
इस छोटे से देश में पिछली जनगणना के अनुसार 130,000 भिक्षु थे और 16,503 मठ, मंदिर और बुद्ध विहार।
इतने छोटे देश में इतने अधिक देवस्थानों और साधुओं का होना आश्चर्यजनक है। यह संख्या तो भारत की स्थिति से भी आगे बढ़ी चढ़ी है। इससे यह आशंका होती है कि उस देश की जनता को भी हमारी ही तरह निठल्लों को खिलाने का भारवहन करना पड़ता होगा और आर्थिक दृष्टि से उस देश पर भारी दबाव पड़ता होगा।
पर वहाँ की वस्तुस्थिति सर्वथा भिन्न है। वहाँ समयगत भिक्षु दीक्षा लेने की प्रथा है।
थोड़े समय के लिए लोग भिक्षु बनते हैं और फिर अपने सामान्य सांसारिक जीवन में लौट आते हैं।
थाईलैंड के प्रत्येक बौद्ध धर्मानुयायी का विश्वास है कि एक बार भिक्षु बने बिना उसकी सद्गति नहीं हो सकती। उसके बिना उसकी धार्मिकता अधूरी ही रहेगी। इस आस्था के कारण देर सवेर में हर सुयोग्य नागरिक एक बार कुछ समय के लिए साधु अवश्य बनता है।
घर छोड़कर उतने समय विहार में निवास करता है, साधना और अध्ययन में निरत रहता है और संघ द्वारा निर्धारित सेवा कार्य में सच्चे मन से पूरा परिश्रम करता है।
भिक्षु का मोटा अर्थ भिक्षुक या भिखारी जैसा लगता है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। बौद्ध धर्म में साधु को, धर्म प्रचारक को भिक्षु कहते हैं। अवसर पड़ने पर उसे भिक्षा द्वारा क्षुधा शांत करने में भी आपत्ति नहीं हो सकती, पर यह आवश्यक नहीं कि भिक्षु नामधारी को अनिवार्य रूप से भिक्षा ही मांगनी पड़े।
भिक्षुक और भिक्षु दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते रहते हैं।
भिक्षुक दीनहीन, अपंग, असहाय व्यक्ति को, उदर निमित्त याचना करने वाले को कहते हैं,
जबकि भिक्षु विशुद्ध रूप से संत के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
थाईलैंड निवासी भिक्षुक नहीं भिक्षु होते हैं। दूसरे अर्थों में उन्हें साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के चतुर्विध परमार्थ प्रयोजनों में निरत परमार्थ परायण व्यक्ति कहना चाहिए।
ऐसे लोग जितने अधिक किसी देश में होंगे, वह उतना ही अधिक फूलेगा फलेगा। थाईलैंड में धर्म आस्था अन्य देशों की तरह डगमगाई नहीं है। वहाँ के नागरिकों को अभी भी प्राचीन काल के धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण लोगों की तरह जीवन यापन करते हुए देखा जा सकता है। इसका श्रेय वहाँ के समर्थ साधु समाज को ही दिया जा सकता है। मंदिर वहाँ पूजा स्थल तो हैं, पर उनका उपयोग मात्र उतने ही सीमित प्रयोजन के लिए नहीं होता।
प्रत्येक विहार में वहाँ एक साधन संपन्न विद्यालय भी होता है, जिसमें न केवल छात्र छात्राओं को सामान्य शिक्षा दी जाती है, वरन उच्च स्तरीय धर्म शिक्षा की भी व्यवस्था रहती है।
प्रत्येक विहार में एक अच्छा पुस्तकालय होता है, जिसमें धार्मिक जीवन जी सकने की प्रेरणा दे सकने वाली चुनी हुई पुस्तकें पर्याप्त संख्या में रखी जाती हैं। स्कूलों में शिक्षा का कार्य बुद्ध प्रार्थना के साथ आरंभ होता है।
गुरु पूर्णिमा का उत्सव शिक्षा संस्थाएं मनाती हैं, जिनमें छात्रों द्वारा अध्यापकों को श्रद्धासिक्त पुष्पांजलि भेंट की जाती है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा तक का माध्यम वहाँ थाई भाषा ही है।
विदेशी भाषाओं को यहाँ शिक्षा माध्यम में स्थान नहीं दिया गया है।
BOAO उपाधि को वहाँ पंडित और MOAO उपाधि को महापंडित शब्द के साथ संबंधित करते हैं। जनता अपनी धर्म आस्था की अभिव्यक्ति एक बार अनिवार्य रूप से भिक्षु दीक्षा लेकर व्यक्त करती है। बुद्ध संघ उस श्रद्धा का सदुपयोग करता है, व्यवस्थित, नियंत्रित एवं परिष्कृत करता है। साथ ही ऐसी योजनाएं बनाकर तैयार रखता है, जिसके अनुसार उस धर्म प्रेरणा को उपयोगी कार्यों में संलग्न किया जा सके।
अनेकों सृजनात्मक योजनाएं तैयार रहती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए विहार में प्रविष्ट भिक्षुओं को लगा दिया जाता है।
उनके श्रम, ज्ञान एवं मनोयोग का समन्वित उपयोग मिलने से अनेकों उपयोगी योजनाएं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सहज ही चलती रहती हैं। सुयोग्य व्यक्ति बिना किसी पारिश्रमिक के यदि रचनात्मक कार्यों में लगेंगे तो उस देश में बहुमुखी प्रगति की बाढ़ आएगी ही।
इस दिशा में थाईलैंड की बुद्ध संस्था बहुत सजग है, वह किसी भी भिक्षु को उच्छृंखल अनियंत्रित नहीं होने देती। हर किसी को पूर्ण अनुशासन में रहना पड़ता है।
यदि भारत की तरह वहाँ के भिक्षु स्वेच्छाचारी बन जाएं और अनियंत्रित सांड की तरह विचरें तो इस छोटे से देश की इतनी बड़ी भिक्षु संख्या देखते देखते टिड्डी दल की तरह सारी समृद्धि को चट करके रख दे। पर वहाँ की दूरदर्शी धर्म संस्थाएं वैसा होने नहीं देती। अनुशासन और धर्म परायणता को वहाँ परस्पर पूर्णतया समन्वित बनाने का सफल प्रयोग किया गया है।
इस दिशा में राजकीय सहयोग भी पूरा है। राज्यकोष से मठों को मुक्त हस्त से सहायता दी जाती है, साथ ही उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखा जाता है। धर्मसंघ में शासन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहते हैं। वे धर्म प्रसंग में तो हस्तक्षेप नहीं करते, पर यह अवश्य ध्यान रखते हैं कि जनता के दिए हुए तथा शासन से मिले धन का उपयोगी प्रयोजनों में ही खर्च किया जाता है या नहीं, कहीं अपव्यय तो नहीं होता। थाईलैंड कृषि प्रधान देश है।
वहाँ 84% लोग खेती करते हैं, पर वे अत्यंत कर्मठ, पुरुषार्थी, शांतिप्रिय और धर्मप्रायण लोग हैं।
परस्पर मिलजुल कर रहना और हंसी खुशी की जिंदगी जीना उन्होंने धर्म संस्था से सीखा है। भिक्षु सेना ने उन्हें अनेकानेक सद्गुण सिखाए हैं और परिष्कृत स्तर का जीवन किस तरह जिया जा सकता है यह बताया है।
इस प्रशिक्षण से न केवल उनकी विचार पद्धति ऊंची उठी है, वरन भौतिक समृद्धि भी बढ़ी है।
यह आश्चर्यजनक प्रसंग है कि एशिया के किसी भी देश की अपेक्षा थाईलैंड निवासियों की औसत आमदनी कहीं अधिक है।
वे सुसंपन्न हैं।
उस देश की विदेशी मुद्रा बहुत मजबूत है। स्वर्ण कोष की दृष्टि से थाईलैंड की साख और धाक संसार के आर्थिक क्षेत्र में मानी जाती है।
धर्म समन्वय, रक्त समन्वय उस देश की अपनी विशेषता है। इसके अतिरिक्त सीमित समय के लिए साधु दीक्षा लेने वाली पद्धति और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है।
इन सब बातों ने उस छोटे से देश को अपने धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति करने का अवसर दिया है। स्याम थाईलैंड में भारतीयों की महत्वपूर्ण हलचलों का विवरण दक्षिण के तिरुवलम में उपलब्ध एक लेख से चलता है।
उन दिनों वैष्णव धर्मावलंबी मणिग्रामम संघ के सदस्य स्याम जाकर रहने लगे थे। 13वीं सदी तक स्याम कंबोडिया का ही एक अंग था। उसकी स्वतंत्रता राजा इंद्रादित्य के द्वारा संभव हुई।
वे 1218 में सिंहासनारूढ़ हुए।
इसके बाद राम राजा सूर्यवंश राम, रामाधिपति राज, वरधीर राजा, महामहिंत आदि उत्तराधिकारी होते रहे। इस बीच उस देश पर वर्मा के राजा आक्रमण करने लगे थे। सन 1510 में इंद्र राजा का शासन था। वर्मा, फ्रांच, अंग्रेज इस क्षेत्र में तरह तरह के षड्यंत्रों के साथ आधिपत्य जमाते रहे तो भी राजतंत्र किसी प्रकार चलता रहा। 1868 से 1911 तक चूड़ालंकार राजा का शासन था। सन 1911 से 1926 तक वाजीरा बुद्ध नामक राजा रहा। इसे भी राम की उपाधि प्राप्त थी। यह स्याम की शासन परंपरा में छठा राम था। यूं यहां बौद्ध धर्म सन 422 में ही पहुंच गया था, पर 13वीं सदी तक प्रमुखता ब्राह्मण धर्म की ही रही। स्याम बहुत समय तक कंबोडिया के शासन के अंतर्गत ही था, इसलिए स्वभावतः उस क्षेत्र की प्रजा पर शैव शासन का प्रभाव बना रहा। राजा धर्माशोक ने स्याम में एक भव्य विष्णु मंदिर बनाया था। इसी प्रकार अन्य राजा अपने कृति स्मृति के लिए कई कई मंदिर बनाते रहे, जिनके भग्नावशेष अब तक उस क्षेत्र में जहां तहां बिखरे पड़े हैं।
जो बने हुए हैं उनमें देव पूजा अभी भी प्रचलित है। फ्रोके के शिव मंदिर में अभी भी श्रद्धापूर्वक पूजा होती है।
ब्राह्मण वर्ग का अस्तित्व अभी भी यहां है। ब्राह्मण को ब्रह्म, ब्रह्म को फ्रम कहने की अपभ्रंश परंपरा चली।
फ्रम जाति के लोग ही यहां कर्मकांड कराते हैं और पवित्र माने जाते हैं। देवनगर तो इन्हीं की बस्ती है। इन लोगों के आचार व्यवहार में ब्राह्मण परंपराओं का दर्शन अभी भी किया जा सकता है।
थाईलैंड के वर्तमान राजगुरु भारतीय मूल के ब्राह्मण हैं। शिखा यज्ञोपवीत धोती धारण करने वाले वासुदेव मुनि के पूर्वज अब से 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत से उस देश में पहुंचे थे। तत्कालीन शासकों के वे राजगुरु थे। पीछे वही पद उनके वंशजों को मिलता चला आया।
यूं उस देश के वर्तमान शासक भी अपने पूर्वजों की तरह ही बौद्ध धर्म मानते हैं।
फिर भी उनने ब्राह्मण धर्म के प्रति सहिष्णुता और समन्वय की नीति अपनाई और कट्टर ब्राह्मण धर्म पुरोहितों को राज्य गुरु मानने में कोई आपत्ति नहीं की। राज्य कोष से इन राजगुरु को आजीविका मिलती है।
उन्हीं के परिवार के 10 अन्य ब्राह्मण भी हैं जो मंत्र विद्या एवं कर्मकांड विधान के जानकार हैं। उन्हें भी राजकोष से वृत्ति मिलती है। इन लोगों को विशेष आचरणों का पालन करना पड़ता है।
वे मांस नहीं खाते। राजकीय धर्म कृत्यों की व्यवस्था यही मंडली कराती है। यह सभी ब्राह्मण शिखा यज्ञोपवीत से युक्त धोती परिधान धारण करने वाले होते हैं।
राजगुरु का अपना मंदिर है जिसे देवस्थान कहा जाता है।
विष्णु गणेश शिव इंद्र, सूर्य, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की मूर्तियां इसमें स्थापित हैं। साथ ही भगवान बुद्ध देव भी वहीं उच्च आसन पर विराजमान हैं।
थाईलैंड में रामायण कथा बहुत लोकप्रिय है। वहां के निवासियों का विश्वास है कि वह घटनाक्रम उन्हीं के देश में संपन्न हुआ था। रामायण की नृत्य नाटिकाएं बहुधा आयोजित होती रहती हैं और उनमें जनता बहुत रुचि पूर्वक भाग लेती है।
थाई भाषा की एक पुस्तक है बाली की भाई को शिक्षा। यह कर्तव्य पालन और नीति निष्ठा की आदर्श पुस्तक है। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को जो धर्म नीति सिखाई उसी का इसमें वर्णन है।
इसे प्रायः स्कूलों में पढ़ाया जाता है।
स्याम का प्राचीन साहित्य रामायण, महाभारत आदि भारतीय धर्म ग्रंथों की अनुकृति है। बौद्ध धर्म के प्रवेश के बाद वहां बौद्ध साहित्य स्यामी भाषा में प्रचुर परिमाण में छपा है।
स्यामी भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार है। प्राचीन काल के शिलालेख संस्कृत भाषा में पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि वहां किसी समय संस्कृत की ही प्रधानता रही है। यूं वहां सर्वत्र देव मंदिरों के ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं, पर इनमें लोफबुरी विशेष रूप से दर्शनीय है। जीवित प्राचीन धर्मस्थानों में ऐसे भी कितने ही हैं जो पहले हिंदू मंदिर थे, पीछे उन्हें बौद्ध मंदिरों में बदल दिया गया। स्याम थाईलैंड पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ में से कुछ के नाम यह हैं।
1. ए हिस्ट्री ऑफ स्याम फ्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम 2. ए सेलेमनी कृत स्कल्पचर इन स्याम 3. सरजान मार्शल कृत बुद्धिस्ट आर्ट इन स्याम 4. मजूमदार कृत इंडियन कोलोनाइजेशन इन स्याम 5. नीलकंठ शास्त्री कृत साउथ इंडिया इन्फ्लुएंसेंस इन फार ईस्ट। सामान्य आबादी वाला यह देश वर्षा की दृष्टि से बहुत ही प्रभावशाली है।
वह कृषि प्रधान देश है। 84% लोग खेती करते हैं। वहां की औसत आय एशिया के किसी भी देश से ज्यादा है।
विदेशी मुद्रा एवं स्वर्ण भंडार से थाईलैंड की आर्थिक साख बहुत ही मजबूत मानी जाती है। मलेशिया और सिंगापुर। वर्तमान मलेशिया 6000 द्वीपों का एक समूह है जिसमें प्रधानतया मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, बाली, बोनियो और सेबी जाते हैं। प्राचीन समय में वर्मा से लेकर मलेशिया का यह सारा क्षेत्र भी भारत में स्वर्णद्वीप या स्वर्णभूमि के नाम से पुकारा जाता था। अरब इतिहासकारों ने भी इस क्षेत्र को स्वर्णद्वीप ही माना है। अलबरूनी इबन रुईद फिरिंद के ग्रंथों में यही नाम दिया गया है। जातक ग्रंथों तथा कथा साहित्यसार कथाकोश आदि में इस सुवर्णद्वीप की तत्कालीन स्थिति का सुविस्तृत वर्णन है। वर्तमान जावा प्राचीन समय में यवद्वीप कहा जाता था।
इस क्षेत्र को बसाने वाले लोगों को इतिहासकारों ने इंडोनेशियन कहा है। उनकी आकृति प्रकृति का जिस प्रकार वर्णन किया जाता है उसे देखते हुए उन्हें भारतीय मानने में कोई संकोच नहीं रह जाता।
मलेशिया क्षेत्र में ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में हिंदू धर्म पहुंचा और 7वीं सदी तक निर्बाध गति से फैलता और बढ़ता रहा। उस क्षेत्र में मिले ध्वंसावशेष और शिलालेख इस तथ्य की परिपूर्ण पुष्टि करते हैं। फाहियान के अनुसार उस क्षेत्र पर हिंदू धर्म का भारी प्रभाव था। चीनी यात्री ई चिंग के समय तक वहां उस क्षेत्र के 10 राजा बौद्ध धर्मानुयायी बन चुके थे और प्रजा ने इस धर्म को भली प्रकार अंगीकार कर लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य धर्मपाल तथा विष्णु वज्रबोधि के प्रयास से इस सारे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का विस्तार द्रुत गति से हुआ था।
चीनी विवरणों के अनुसार इस क्षेत्र में भारतीयों के आवागमन की भारी भीड़ बनी रहती थी और हजारों यात्री हर रोज यहां से वहां आया जाया करते थे। चीन के लैग वंशीय विवरण के आधार पर यह पता लगा है कि मलाया के राजा भगदत्त ने सन 515 में अपना राजदूत आदित्य चीन भेजा था और उसके हाथों एक पत्र सहित 41 उपहार वस्तुएं चीन पहुंचाई थीं। इसके बाद के राजाओं के नाम के साथ वर्मा शब्द जुड़ा होता है। यह सिद्ध करता है कि वह क्षेत्र हिंदू राजाओं के हाथों में रहा है।
चीनी इतिहास में एक उल्लेख यह भी है कि चीन सम्राट हाई टू 454-65 के समक्ष मलाया के राजा श्रीवर नरेंद्र ने अपने संदेशवाहक रुद्र के हाथों कुछ उपहार भेजे थे।
यह नाम हिंदू धर्मानुयायियों के ही हो सकते हैं।
इस क्षेत्र के सुनगेई वतु में तथा फलों पर्वत पर जो प्राचीन आदेश एवं शिलालेख मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वहां हिंदू राज्य था और संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। यह अवशेष 4th-5th शताब्दी के हैं। मलाया और जावा की बनी हई भारतीय देवमूर्तियां पीरू और मैक्सिको तक मिलती हैं।
मलाई भाषा में संस्कृत के हजारों शब्द मौजूद हैं। यूं 15वीं सदी में अरबों से पराजित होने पर मलाया निवासियों को इस्लाम स्वीकार करना पड़ा, फिर भी अब तक उस देश के निवासियों के नाम हिंदू नामों से मिलते जुलते पाए जाते हैं।
प्राचीन काल के राजाओं के नाम भूमिपाल, आनंदमही, नरोत्तम वर्मन, जयवर्मन, इंद्रवर्मन आदि होना इसी तथ्य पर प्रकाश डालता है कि इस देश पर हिंदू सभ्यता की गहरी धाक थी। यूनान के भूगोल वेता पाटोलेमी ने मलाया आदि भारत के सारे देशों का उल्लेख इंडिया बियॉन्ड दी गेंगेज अर्थात गंगा पार का भारत का नाम देकर किया है।
किसी समय में यह देश भारतीय धर्म के अंतर्गत ही था। अभी भी वहां पर लगभग 8 लाख भारतीय मौजूद हैं जो वहां की जनता के 15% हैं। आधे से अधिक मलाई किसी समय के भारतीय ही हैं।
प्रख्यात इतिहास वैसा सिल्वियन लेवी ने लिखा है, इराक से लेकर चीन सागर तक और प्रशांत महासागर के द्वीपों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित कोमा द्वीप तक भारत ने मानव जाति की 1/4 जनसंख्या को पिछली शताब्दियों में प्रभावित किया है। 4वीं सदी में भारतीयों की अनेक बस्तियां मलाया में बसी हुई थीं। इनमें से बड़ी बस्तियां चुनफान, काया, नाटवान, धम्मरत, श्रीमान याला,